أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور یہ امتحان کا دور ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ اس میں آزمایا جا رہا ہے خوف سے, بھوک سے, جان مال کی کمی سے اور پیاروں کی کمی سے. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس میں مکتب تشیع بحیثیت ایک پاکستانی قوم اس امتحان میں شریک ہے. مختلف علمی, سماجی شخصیات کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ایک امتحان الہی ہے. اور اسی دوران علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کی خبر بھی آئی اور آپ سب نے ان کا نماز جنازہ دیکھا. قوم نے عزت و احترام سے اور بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ ان کو ودا کیا. ان کی آخری آرام گاہ تک ان کے جسد خاکی کو پہنچایا اور سپرد خاک کیا اور ان کے خانواده سے تعزیت کی. سر درس ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ جس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں اور جسے ایک نئے انداز سے ایک جنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مکتب تشیع اور ملت تشیع کو افتراق و انتشار کا شکار کر کے محبان اہل بیت کو آپس میں دستوں کی ربا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے. نماز جنازہ کون پڑھائے گا, کہاں پہ ہوگی, تدفین کہاں پہ ہوگی, خالصتاً ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جس میں یہ مرحوم کی وصیت موجود ہو یا اس کے جو ورثہ ہیں ان کی ثوابدید پر اس چیز کو سامنے لایا جائے گا کہ کون کب کہاں کیسے یہ سارے کام امور انجام پائیں. یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے. اس میں کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ جونیئر تھا, سینئر تھا, علماء موجود تھے یا بڑے علماء تھے, چھوٹے علماء تھے. یہ ایک خالصتاً فقہی مسئلہ ہے, اس میں مجھے اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں ایک عظیم عالم کے ارتحال کے غم میں اور ان کے خانواده کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ان کا ذاتی مسئلہ ہے اور وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے اس چیز کو انجام دیں گے. دوسرا مسئلہ جو اس وقت ایک نئی جنگ بنتا جا رہا ہے وہ قبلہ کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے. میں نے اپنے تعدید پیغام میں پہلے بھی عرض کیا تھا اور ابھی بھی اس کا اعادہ کر رہا ہوں, اس کے شواہد موجود ہیں. خود حضرت علامہ ساری زندگی ایک معتدل شیعہ مفسر قرآن اور خطیب و ذاکر کی حیثیت سے ممبر رسول پہ بیٹھ کر مجالس پڑھتے رہے. انہوں نے کبھی اس ممبر کو غلو کا, تحریف کا, انتشار و افتراق کا ذریعہ نہیں بننے دیا. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے نصیریت کی مخالفت کی ممبر سے, انہوں نے ایسے اشعار کی کہ جس میں شعرا شرک و شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا شرک کی سردوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا وہ نوجوان جو ان کے مجالس میں پڑھتے رہے ہیں ان کو روک کر, ٹوک کر, ان کو سمجھا کر کہ توحید کیا ہے اور عدل کیا ہے اور شرک کیا ہے اس کی تصحیح کرتے رہے ہیں. اور کہیں پر بھی علامہ طالب جوہری نے شہادت ثالثہ کے عنوان سے یا اس قسم کے وہ مسائل کے جو افتراق اور انتشار کا سبب بن سکتے تھے ان کی طرف کبھی جھکاؤ پیدا نہیں کیا, بلکہ ایک ہمیشہ ایک معتدل عالم دین ہونے کی حیثیت سے, ایک حوض علمیہ نجف کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے, ایک ذاکر و خطیب ہونے کی حیثیت سے, ایک جہاں دیدہ شخصیت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ سے مکتب تشیع کی بنیادی تعلیمات کا دفاع کیا, عقائد کا دفاع کیا, علم کلام اور دوسرے علوم پر دسترس کے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ حقیقی تعلیمات کو پیش کیا ہے. لہذا شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہو, غلو و تقصیر کا مسئلہ ہو, ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے یا اس کو ایک خاص انداز سے بیان کرتے ہوئے آپ نے در حقیقت حقیقی تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا ہے. اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ افراد کے جو شہادت ثالثہ کو ایک مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں वो इस नमाज जनाजा को अपनी उसूली जीत करार दे रहे हैं उन अफराद पर के जो शहादत सालिसा का इनकार करते हैं कि नमाज के तशहुद में ये जुज नहीं है, वाजिब नहीं हो, जैसे कि उलमा का फतवा है। क्योंकि दो गिरोह हैं, एक कहते हैं कि जनाब जो है वो शहादत सालसा मिसाल के तौर पर पढ़नी वाजिब, इसके बगैर नमाज मसन बातिल है। एक गुरु कहता नहीं, ये वाजिब नहीं है, जुज नहीं है, और उसमें उलमा का फतवा मौजूद है कि बग़ैर जुज के भी जो है उसको अदा किया जा सकता है। उसमें फिर उलमा के फतवे की तरफ देखा जाएगा। 10.5 मसला जो है वो तालिब जोहरी साहब कबला की नमाज जनाज़ा का मसला है कि जिसमें शहादतैन के बाद जो है वो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना और उनके औलाद ताहिरा की गवाही दी गई है हुज्जतुल्लाह के, वो हुज्जत इलाही हैं, और इस चीज़ को मसला बना के पेश किया जा रहा है। और फिर उसको एक जंग की सूरत में और एक नए महाज की सूरत में, खुदा रहा इस मौके पे ये सब ना करें, और आज ये इतना बड़ा गम कौम सह रही है, कौम को मज़ीद इंतशार और इफ्तराक में मुबतला ना करें, जहरी कर्ब अजियत में मुबतला ना करें। जो हजरात ये जंग लड़ना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए कम से कम अपनी कौम के मोहसिनों को तो याद रखें ना, उनको तो जरिया और वसीला ना बनाएं ना अपनी जीत और हार का। सबसे पहला मसला यह है, नमाज जनाजा एक दुआया नमाज है कि जिसके ख़ास अहकाम में उसमें कमी बेशी की जा सकती है, मुसाइब असकार का इजाफा किया जा सकता है। तवज्जो रखिएगा, जो वाजिब है वो तो बहुत ही मुख्तसर नमाज है, उसके अलावा बहुत सारे असकार मुस्ताहब हैं, और उनके अलावा दुआया कलमात वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और ख़ुद मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम हुनी रहमतुल्लाह अलैह की जो नमाज जनाजा हुई थी उसमें हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा गुलबायगानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तीनों शहादतें दी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इमाम हुनी शहादत सालिसा के कायल थे या आयतुल्लाह गुलबायगानी भी शहादत सालिसा के कायल थे? जी नहीं, नमाज में शहादत सालिसा के कायल नहीं थे, नमाज के तशहुद में शहादत सालिसा के कायल नहीं थे। ये एक फ़िक़ही मसला, इसको समझना चाहिए उसूलियों को भी और जो उनके मुकाबले में मौजूद हैं जो तकलीद को जायज़ नहीं समझते और अपनी मनमानी करते हैं, उनके लिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम खुमैनी हो या तो गुलबैगानी हो या और दूसरे उलमा हो, ये लोग जुज़ नहीं समझते। जब जुज़ नहीं समझते यानी हिस्सा नहीं है, तो फिर उसको जो है एक मुसब ज़िक्र की हैसियत से अपने मुश्तहिद के फतवे के मुताबिक जो है उसे नमाज में दाखिल कर सकते नहीं कर सकते, उसके अपने मुश्तहिद की तरफ रुजू किया जाए। लिहाजा इमाम खुमैनी की नमाज जनाजा को भी जो है वो दर हकीकत एक सनद बना के पेश किया जा रहा है, और अब हज़रत क़िबला अल्लामा अल्लाह ताला जौहरी साहब की नमाज जनाजा को भी एक सनद बना के पेश किया जा रहा है। खुदा रहा ये नमाज जनाजा का मसला एक अलग मसला है, जिसको मैंने कहा उसके फ़िक़्ही अहकाम हैं, और वो जाके उलमा की किताबों में और मिनहजुस सालेहीन और साहिब जवाहर की किताबों में जाके देखा जाए, लुमतैन में देखा जाए, और दूसरी किताबों में उसको तलाश किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं का काम है कि जो दर हकीकत उसूली उलमा की तकलीद को अपने लिए वाजिब समझते हैं और उस दर हकीकत नज़रिए के कायल हैं। उसके मद मुकाबिल जो अफराद वो तकलीद को जब दुरुस्त नहीं समझते तो उनसे मैं मुखातिब भी नहीं हूँ, लेकिन उनको दावत फ़िक्र ज़रूर दूंगा। ये 11वें इमाम का हुक्म है, फ़अलिल अवाम अन युक़लिदूहू, अवाम को जो है कि तकलीद करें। तवज्जो रखिएगा, तकलीद का हुक्म किसी मौलवी मुल्ला ज़ाकिर शायर का नहीं है, ये 11वें इमाम का हुक्म है, तवज्जो रखिएगा। और वो एक मुफसल हदीस है जिसको मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। नमाज के तशहुद का मसला ख़ास मसला है, आया जुज़ है या नहीं है। बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है कि उसको पढ़ा जाए, अक्सर उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा, इसमें भी जो हजरात कह रहे हैं ये खुद उसूली उलमा की फतह ज़फ़र है कि आप उसूली उलमा के अकवाल को अपनी ज़बान पे लेकर आ रहे हैं। यानी वो अफराद जो तकलीद के मुनकर थे आज वो इस बात के कम से कम पाबंद तो हुए कि वो उसूली उलमा के फतवा को लेकर आएँ और कहें कि देखो उसूली उलमा ने फतवा दिया, अगर किसी ने फतवा दिया है, और जैसे कि मौजूद हैं कुछ लोग उलमा के जिन्होंने फतवा दिया है, लेकिन आप जिसकी तकलीद करते हैं आप उसकी तरफ रुजू करें ताकि मसला हल हो जाए। अब अगर शहादत सालिसा जो मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर शहादत सालिसा को पेश किया जा रहा है कि जनाब अल्लामा तआला जौहरी साहब क़िबला की नमाज़ में ये अदा की गई, ये हमारी जीत है, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। और वो अफराद जो ज़बरदस्ती की तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं और जो मुकल्लिदीन हैं उलमा के, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमाम खुमैनी की नमाज जनाजा भी इसी तरह हुई, आयतुल्लाह गुलबागानी ने पढ़ाई थी, वहाँ कोई शहादत सालसा का मसला नहीं था। इमाम खुमैनी का मकतब, इमाम खुमैनी की उसूली रविश आपको मालूम है, इमाम की फ़िक्री रविश आपको मालूम है कि वो किस कस्म के मरजा थे और उस बाद में आने वाले फ़ुकहा और मराजीन किस जो है उसूली रविश और मनहज को अख्तियार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि नमाज जनाजा और नमाज यौमिया में एक बुनियादी फ़र्क मौजूद है। उसके फ़िक़ी मसाइल मौजूद हैं कि किन किन हालतों में नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, कि जिनमें नमाज यौमिया नहीं पढ़ी जा सकती, तो उसकी तरफ फ़िक़ी किताबों की तरफ रुजू करना होगा। और सिर्फ इस बिना पर कि जनाब नमाज जनाजा में अगर शहादत सालिसा और आइमा ताहरीन की विलायत की गवाही दी गई है, तो ये जवाज बन जाता है कि हम नमाज यौमिया के तशहुद में भी या नमाज के तशहुद में भी जो है वो शहादत सालिसा का इकरार कर रहे हैं। ये कयास हो जाएगा, ये दर हकीकत कयास है कि जो मकतब अहले बैत में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं, और जो हजरात ये इस कस्म गुफ्तगू कर रहे हैं वो मकतब अहले बैत की राह और रविश और तालीमात को छोड़ कर दर हकीकत उन लोगों के मुखालिफीन मकतब जाफरी और अहले बैत के अकवाल की पैरवी करते हुए कयास कर रहे हैं कि जनाब शहादत सालिसा में चूँकि इसको वो नमाज जनाजा में शहादत सालिसा के पढ़े जाने को दलील बनाकर नमाज के तशहुद में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस बिना पर लाजम ज़रूरी है कि उन अफराद को कि जो उसूली उलमा की तकलीद करते हैं उनको समझना चाहिए और ज़बरदस्ती एक चीज़ को जो है वो अपनी तरफ से ये कहकर कि ये साजिश है और फला है और ऐसा और वैसा है, इन मफरूज़ों को तर्क कीजिए और जो फ़िक़ही मसला है उसको बयान कीजिए ताकि आवाम में जो है वो एक वसत पैदा हो और जो हजरात तकलीद के मुखालिफ हैं उनका मुदल्लल जवाब दिया जाए और गाहे बगाहे हमारी जानिब से जवाब दिए जाते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी इसके मुदल्लल जवाब दिए जाएंगे। लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि इस कस्म की बातों को जो आवामी सतह की हैं ये उन तक बात पहुँचाई जाए कि आप कयास ना करें। मकतब जाफरी में कयास की कोई गुंजाइश नहीं है। अहले बैत ने कहा अव्वल मन कासा फहुवा इब्लीस, जिसने सबसे पहले कयास किया वो इब्लीस था, लिहाजा मकतब अहले बैत कयास नहीं है। कयास क्या है कि अगर ये चीज़ यहाँ मौजूद है तो इसका हुक्म फला चीज़ पे लगा दिया जाए, यानी अगर नमाज जनाजा में अगर शहादत सालिसा दी जा सकती है और पढ़ी जा सकती है तो नमाज के तशहुद में भी दी जा सकती है, हरगिज़ नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि ये एक फ़िक़ही मसला है, ये एक खालिसतन फ़िक़ही मसला है, तकलीदी मसला है। आप जिस मुश्तहिद की तकलीद करते हैं आप उससे पूछिए, अगर वो इजाज़त देता है तो इंशाल्लाह आप उसको अंजाम दे सकते हैं उसके फतवे के मुताबिक। इसलिए कि हम अखबारी रविश के मुकाबले में उसूली उलमा की तकलीद करते हैं और उसूली रविश को अपनाते हैं कि जो आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की बयान करदा तालीमात का नतीजा और समरा है। लिहाजा इस चीज़ को आपस की जंग का मसला ना बनाया जाए, इस चीज़ को आपस में इंतशार का मसला ना बनाया जाए। खुदा के लिए इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। जो लोग तकलीद करते हैं उनको चाहिए कि समझें कि ये मसला बहुत सादा सा मसला है। नमाज जनाजा एक दुआया शक्ल में नमाज है जिसमें इजाफा किया जा सकता है, उसके दुआया कलमात हैं, उसका एक तरीक़ा है, उसके तहत इजाफा किया जा सकता है, ना कि हर चीज़ का इजाफा किया जा सके, यानी उसका एक तरीक़ाकार एक मेकनिज़म मौजूद है। और जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते, ठीक है, हम उनसे कोई गिला भी इन माना में जो नहीं मानते वो नहीं मानते, ठीक है कि वो उनका मसला है, लेकिन हम उनको दावत फिक्र ज़रूर देंगे। लेकिन इस चीज़ को जो है वो जंग की सूरत ना बनने दी जाए। और मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा आपस में जो है वो मिल बाँट के जो है इस तरीके से वहदत को अपने हाथ से जाने ना दें। इस वक्त कौम को ज़रूरत है मुत्तहिद होने की। उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी गुफ्तगू उस तनिश को, उस तनाव को जो इस वक्त पैदा की जा रही है और मुगरिज अफराद इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और इस इन मसाइल को हवा दे रहे हैं, उनको होश के नाखून दिलाने के लिए काफ़ी होगी, उनको गौर व खौस और तवज्जो दिलाने के लिए मुआविन मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की मदद फरमाएं।